शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 28 जनवरी साकार बाबा की मुरली है। बाबा ने कहा, बच्चे बाप तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं तो तुम्हें भी औरों को हीरे जैसा बनाना है, और उसके लिए बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाबा को याद करना है और बाबा की श्रीमत पर चलना है। दूसरी बात बाबा ने कही कि जो पास विद ऑनर होते हैं वही आज की माला में आते हैं, वो नंबर वन है और उन्हें जरा भी सजा नहीं मिलती ना? सिर्फ 8 माला के रत्न ऐसे हैं जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती और वो कर्मातीत बनते हैं। तो जो पीछे ज्ञान में आते हैं, अगर वो श्रीमत पर चलते हैं, माया के तूफानों से अपनी संभाल करते हैं, तो वो भी 8 की माला में आ सकते हैं। फिर बाबा ने एक बात और कही कि तुम बच्चों को हुक्म है, तुम्हें किसी से भी उधार नहीं लेना है, सच्ची कमाई करनी है और करानी है। अगर किसी से उधार लेंगे तो फिर 21 जन्मों तक उनको देने रहना पड़ेगा। तो सुनते हैं। मीठे बच्चे पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो, कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो, कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। प्रश्न है, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर है, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। जो बाबा ने हमें बनाया, हमें फिर औरों को भी हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। दूसरा भी प्रश्न है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? कौन सा हुक्म दिया है? उत्तर है, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ, तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। इसीलिए अपने विद्यालय में कुछ लोन पर, दुनिया में तो बहुत लोन चलते हैं ना आजकल, लेकिन अपने यहाँ लोन पर कोई भी काम नहीं होते हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, जहां चित चैन पाए। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, क्या जानते हैं, कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? दूर कहां जा रहे हैं? परम धाम, शांति धाम, अपने स्वीट साइलेंस होम में ना, उससे स्वीट स्थान कोई होता नहीं। शांति धाम ही दूर है जहां से हम आत्माएं आती हैं, वह है मूल वतन। यह है स्थूल वतन, वह है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बिगड़ तो कोई ले जा ना सके, जब तक बाबा आकर के हमको शांति धाम का रास्ता ना बताए तब तक हम नहीं जा सकते। तो इसलिए बाबा के बिगड़ कोई भी हमें शांति धाम नहीं ले जा सकता। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणिया रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है? किसने सिखाया? बाबा ने, दूर ले चलने वाले बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? प्रश्न बहुत है, कितनों को ले जाएंगे दूर? बाबा पूछ रहे हैं कितनों को ले जाएंगे। गिनती है या अनगिनत है? अनगिनत है। एक पंडे के सच्चे, एक पंडे के बच्चे, तुम सब भी पंडे हो। बाबा हमारा रूहानी पंडा है, सुप्रीम पंडा है, और फिर हम सब भी पंडे हैं। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो, और वो युक्ति है मन मना भव। मन मना भव से ही हम परम धाम पहुंच जाते हैं। ये यात्रा है हमारी, मन से हम पहुंचते हैं। बाप को याद करो, कहते भी हैं बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। अब नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं है, तो बनी दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहां है रावण राज्य तो कहते हैं इससे दूर ले चलो, यहां चैन नहीं है क्योंकि यहां पर दुख है, दर्द है, बेचैनी है। तो बाबा को कहते हैं कि इस दुनिया से, पाप की दुनिया से दूर ले चलो। इसका नाम ही है दुख धाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। परम धाम में जाने के लिए कोई तीर्थ यात्रा करनी है या भक्ति में, अब कुंभ का मेला चल रहा है ना, तो कितनी भीड़, कितने धक्के, तो बाबा कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद कहते हैं मैं हूं ही गुप्त, इन आंखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाकड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर है नहीं, जो तुमको माथा टेकना पड़े। बाबा कभी हमको माथा टेकना नहीं सिखाते हैं, हमको माथा नहीं टेकना है। तो बाबा ने कहा मुझे तो पैर है ही नहीं, तुमको तो सिर्फ कहता हूँ, क्या कहता हूँ, लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना है और वो भी बैठे बैठे या कर्म करते हुए, और कोई तकलीफ तो बाबा हमें देते नहीं। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है, मनुष्यों को हीरे जैसा कैसे बनाएं। ड्रामानुसार कल्प पहले माफी कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं। फिर हम औरों को सिखलाते हैं, बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है खोजों के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरों में वजन किया था। ऐसे थोड़ा पुराने टाइम में ये परंपरा थी, गुरुओं को जो है वो सोने हीरे में तोलते थे। नेहरू को सोने में वजन किया था। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे, बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। और बाबा को कोई वजन भी कर नहीं सकता, उसका वजन ही नहीं है तो वजन कैसे करेंगे। तो बाबा ने कहा बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, उनको तुम किस में वजन करेंगे। तुम हीरे आदि क्या करेंगे, तुमको तो दरकार ही नहीं। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, दुनिया में कितना कितना धन ऐसे ही उड़ा देते हैं, मौज शौक में जो भी उनके होते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो, तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भर कर देना पड़े। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई, जो खत्म हो जाने वाली है। आधी कमाई तो लोगों की झूठी कमाई माना काली कमाई होती है, बाबा ने कहा, और ये कुछ भी रहना नहीं है। बाबा ने देखा ये तो कौड़ियां हैं, ब्रह्मा बाबा को फील हुआ ना, हम ये जो कमाते हैं ये तो क्या है, कौड़ी मिसल है। हमको हीरे मिलते हैं तो फिर ये कौड़ियां क्या करेंगे, क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा ले लेवे। तो इसीलिए बाबा ने धक से सब कुछ समर्पण किया, बिल्कुल भी भविष्य की चिंता नहीं की। खाना तो मिलना ही है, पेट को क्या चाहिए, दो रोटी। तो बाबा ने कहा कि सोचा खाना तो मिलना ही है, भगवान पेट खिलाएगा तो सही। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे, पहला पूर माना पहला नंबर वह पा लेते हैं। बाबा को शराफ भी कहते हैं ना, सौदागर है ना बाबा, लेता है पहले फिर देता है। तो हम क्या देते हैं और बाबा हमें क्या देते हैं। तो बाबा ने कहा, तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीजें एक्सचेंज करता हूं। हम क्या देते हैं बाबा को, अपना पुराना तन मन धन, जिसमें अभी कोई ताकत नहीं रही, और बाबा हमें एक्सचेंज करके देते हैं। कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं ना। बाप कहते मैं तुमसे लेता क्या हूं। यह सैंपल देखो, सैंपल माना कौन सैंपल, कौन सा सैंपल है नंबर वन, ब्रह्मा बाबा। तो ये सैंपल देखो, द्रौपदी भी एक तो नहीं थी, तुम सब द्रौपदियां हो। वो तो एक मिसाल दिखा दिया है, यादगार में ऐसा दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम सब द्रौपदियां हैं, वो बहुत पुकारती हैं बाबा हमको बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो, पवित्र बनो माना फिर संपूर्ण पवित्र बनो, बाबा ऐसा चाहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फकुर होना चाहिए। बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इनको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा को भी कौन बना रहा है, शिव बाबा। याद उनको करना है। यह बाबा ब्रह्मा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, वह हमको सिखलाते हैं फिर हम तुमको सिखलाते हैं। पहले वो शिव बाबा से सीखते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा हमें सिखलाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। तो हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में फल कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है। भक्ति में पूरी तरह मन थोड़ी लगता है। तो यहां भी बाबा को याद करते हैं तो ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत बुद्धि इधर उधर जाती है। तो बाबा ने कहा क्यों भागती है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था, ये क्यों याद आते हैं। बाबा को लगता था पूरा टाइम मेरा मन बाबा नारायण की भक्ति करते थे ना, तो उनमें ही रहे, क्यों मुझे दुकान धंधा याद आता है। तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है, घूसा लगता है। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। माया का अपना काम है तो वो अपना काम भी करती है। ऐसे ऐसे अपनी साथ बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो। सिर्फ अपना ही नहीं करना है, दूसरों का भी कल्याण करना है। सेंटर्स खोलो। और ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं। बच्चों को सेवा का उमंग आता है तो फिर ये जगह सेवा करें, यहाँ जाए, सेंटर खोले, प्रदर्शनी करें, सब बाबा को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूं, हमको कुछ दरकार नहीं। शिव बाबा को क्या चाहिए, उसको तो देह है ही नहीं, तो हमको कुछ दरकार नहीं। ये मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना। आप सेंटर खुलेगा तो उसका फायदा किसको मिलने वाला है? बच्चों को ही मिलने वाला है ना। बच्चे ही बैठकर क्लास करेंगे, वो स्थान होगा। तो बाबा ने कहा ये मकान आदि तो तुम बच्चों के लिए बनाते हैं, शिव बाबा तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे ही काम आता है, हमारी ही सेवा में वो लगता है। यह कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। हाँ, ब्रह्मा बाबा भी कोई गुरु नहीं है जो उनको अपने लिए चेले चाहिए। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है। हाँ, फिर उनको ऑफर करते हैं जो भी अच्छा स्थान है रहने के लिए। तो बाबा ने कहा खातिरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हैं हम नए मकान में क्यों रहें, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे पांडव भवन पुराना, फिर नया सुखधाम बना, फिर और भी राजयोग भवन ये सब। हाँ, तो दूर में रहना पसंद नहीं करते। पांडव भवन में कहीं भी मिल जाए तो पांडव भवन ही चाहिए। तो बाबा ने कहा फिर बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है, जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे, हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूं। हाँ, कि भाई मैंने इतना दिया, इतनी सेवा की, अब मेरे को उसका फायदा मिलना चाहिए। तो कई बच्चे ऐसे कि बाबा जैसे आप रहते हो वैसे ही हमको रहना है, बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं। हमको भी अपने साथ रखो, जितना आपके नजदीक होंगे उतना अच्छा है। बाबा के साथ नजदीक में रहना वो ज्यादा पसंद करते हैं। तो बाप समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे सुख धाम में ऊंच पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं। यह है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं, रावण राज्य होता ही है आधा कल्प के बाद। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, कोई नई बात नहीं। तुम प्रदर्शनियां करते हो, कितने ढेर आते हैं, बहुत लोग आते हैं प्रदर्शनी देखने के लिए। तो बाबा ने कहा प्रजा तो बहुत बनेगी। हाँ, जिसने भी ज्ञान सुन लिया एक बार, बाबा कहते हैं वो प्रजा में तो आ ही जाएंगे, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ है। तो प्रजा तो बहुत बनेगी, क्योंकि हीरे जैसा बनने में टाइम लगता है। प्रजा बन जाए वह भी अच्छा, अभी है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। सबका होना है, केवल ब्राह्मणों का नहीं, लेकिन सारी दुनिया की आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होता है। तो बाकी सबका होगा सजाएं खाकर, और ब्राह्मणों का होगा योग बल से। तो बाबा ने कहा कि सबका हिसाब किताब चुकतू होता है, आठ की माला जो बनी हुई है वह है पास विद ऑनर्स की। आठ दाने ही नंबर वन में जाते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती है, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108 नंबर वार तो कहेंगे ना, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं, ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहें तो पास विद ऑनर बन आठ की माला में आ जाएंगे। हाँ, इसीलिए बाबा कोई ऐसी कंडीशन नहीं देता है कि जो पहले आए हैं वही आठ की माला में आ सकते हैं, लेकिन पीछे आए हैं लेकिन अगर पूरा पुरुषार्थ करते हैं तो आठ की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है, ये उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है, ये कमाई है। कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। माया तो सबका पेपर लेगी, तो बाबा ने कहा माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है। खुशी गुम हो जाती है, गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे, रावण का संग बोरे राम का संग तारे। अब कुसंग कौन सा है? रावण का। तो जब से पांच विकारों का असर आ जाता है तो फिर पीछे हट जाते हैं। तो रावण की मत से ऐसे बने हैं। देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं। देवताएं क्यों गिरे? तो रावण के कारण, रावण आया तो माया के वश होकर के। फिर बाबा ने कहा उनके चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं, यह निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। ये खेल है, यह नॉलेज किसको भी समझाना कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है, यहां भी आते ना ग्लोबल हॉस्पिटल के भाई बहने, तो हैं कोई नर्स बैठे हैं क्लास में तो हाथ उठाएं। हाँ, एक बैठे, दो बैठे हैं। तो बाबा ने कहा बाबा इस बच्ची को कहते हैं तुम नर्स हो, तुम वह सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम यह सर्विस भी कर सकती हो, पेशेंट को भी ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे, योग से ही हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है, तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो। क्योंकि पेशेंट्स तो कितने होते हैं और नर्स तो कितना टाइम पेशेंट के साथ गुजारती है, तो जैसे ही मौका मिले उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनाते रहें, तो वो भी अविनाशी कमाई करने के अधिकारी बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेंगी, पैसा भी जो मिलेगा वे इस रूहानी सेवा में लगाएंगी, तो डबल कमाई हो गई। वास्तव में तुम भी सब नर्सेस हो ना। बाबा ने कहा कैसे नर्सेस हैं, छी छी गंदे मनुष्यों को देवता बनाना, यह नर्स समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते हैं मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, तुम भी रोगियों की यह सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। हा? तो बाबा कहते हैं अगर ये सेवा भी करोगे, डबल सेवा हो जाएगी ना, शरीर की तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ साथ आत्मा की भी सेवा करेंगे उनकी, तो कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है, अगर बाबा की याद में होंगे तो साक्षात्कार भी हो सकता है, अगर योग युक्त हो। वही बाबा ने कहा अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े, माना वो भी मानेंगे ना। अगर इस तरह के नर्स सेवा करती है तो बाबा ने कहा तुम करके देखो, यहां बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। निश्चित है बादल भरकर जाएंगे तो बरसेंगे, तो यहां से रिफ्रेश होंगे तो फिर जहां अपना स्थान है वहां सबको रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को ये भी पता नहीं रहता है कि बरसात कहां से आती है, सबको पता है ना कहां से आती है, बरसात कैसे होती है, बादल बादल समुद्र से भरते हैं और बरसते हैं। तो बाबा ने कहा समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्र धनुष कहते हैं ना, शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं ये फिर भी होगा, ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसी ऐसी गलतियां होंगी, हम किसकी ग्लानी नहीं करते हैं क्योंकि जो भी हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, ये तो बना बनाया अनादि ड्रामा है, समझाया जाता है कि ये भक्ति मार्ग है। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, आप मुए मर गई दुनिया, तो वैराग्य होने की सबसे अच्छी विधि है जीते जी मरना, मर जीवा जन्म है, तो इस पुरानी दुनिया से मर गए, आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, सारा मदार पढ़ाई पर है, बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा, पढ़ाई पर सारा मदार है, तो ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। अभी सारे छाल की जर्जरी भूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं, फाउंडेशन देवी देवता धर्म तो प्राय लोप हो गया है, बाकी और सब धर्म है, तो बाबा ने कहा फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है, तो वो टाल टालियां जो निकलती हैं जैसे बरगद का पेड़ उस पर झाड़ खड़ा है, वैसे ये आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था थूर था वो अभी है नहीं, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, है ना, वही देवी देवता कुल की आत्माएं क्या बन गई, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए, तो देवी देवता रहे ही नहीं। मनुष्य किसको सदगति दे नहीं सकते, बाप बैठ ये सब बातें बच्चों को समझाते हैं। तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। सतयुग में कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगी। यहाँ तो बैठे बैठे चले जाते ना, अचानक दुर्घटना में मर जाते हैं, कोई भी ऐसा असमय मर जाते हैं, तो बाबा ने कहा वहां ऐसा कुछ नहीं होगा, फलाना मर गया, यह अक्षर वहां होता नहीं, मरने का शब्द यूज करते ही नहीं है। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगी। किसको साक्षात्कार भी हो सकता है, है ना। बाबा ने वो नर्स से बात की ना, तो उनको बताया बाबा ने, तो बाबा ने वही बात कह रहे हैं। किसको साक्षात्कार भी हो सकता है, साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो पड़े ना, उस काबिल बनेंगे, उस योग्य बनेंगे, तभी तो साक्षात्कार मूरत बनेंगे, ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उसके लिए पढ़ना तो पड़े ना, पढ़ने बगैर थोड़े ही बैरिस्टर बन जाएंगे, चाहे कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े थोड़े ही बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मीरा को साक्षात्कार हुआ ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई, साक्षात्कार से तो सिर्फ एक खुशी हुई कि हाँ ये है, ऐसा बन सकते हैं, पर उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। साक्षात्कार तो सबको हुए ओम मंडली में, लेकिन पुरुषार्थ किया सभी ने। तो बाबा ने कहा नौधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है ना, भक्तों को जो साक्षात्कार होता है नौधा भक्ति करने से। और यहाँ फिर है नौधा याद, एक बाबा की लगन लग जाए, बाबा के सिवाय कोई याद ना आए, नौधा याद। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी बन जाते हैं, बस ब्रह्म में ही लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है, ब्रह्म तो रहने का स्थान है, वो तो परमात्मा नहीं है, तत्व है। अब बाप समझाते हैं अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर, सब कुछ करो लेकिन क्या समझकर, हाँ मैंपन नहीं, मैंपन मैं करता हूँ, मैं हूँ, ये सब भान को भूलकर निमित हूँ, बाबा करण करावनहार है, तो ऊंच पद मिलेगा, फिर ममत्व मिट जाएगा। जब मेरा है ही नहीं, मेरे मेरे को तेरा तेरा कर दिया, तो ममत्व मिट जाएगा। यह बाबा लेकर क्या करेंगे, इसने तो सब कुछ छोड़ा ना, बाबा ने तो सब कुछ छोड़ा ना, घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं, बाबा खुद अपने महलों को छोड़कर आए, बाबा को क्या करना है। ब्रह्मा बाबा को भी नहीं चाहिए, शिव बाबा का तो चाहिए ही नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी बाबा कहते हैं, वो भी क्या करेंगे। ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे, बाबा ने तो कभी भी बाबा नए मकान में रहा ही नहीं, बाबा तो हमेशा अपने पुराने कमरे में ही रहा, है ना, चाहे फिर कितना भी बाबा के होते हुए भी मकान बना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चों के लिए बनाते हैं। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी, तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दे, क्योंकि भीड़ लग जाएगी तो क्या होगा, अभी भी पांडव भवन में भीड़ होती है तो क्या होता है, होती है ना, जब बाबा के टर्न होता है तो कितना सब चार धाम करने आते हैं, पूरी बसेस की लाइन होती है ऊपर से नीचे तक। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारा प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दें, बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है, कहीं प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, प्रेसिडेंट जाएंगे तो लाखों पहुंच जाते हैं। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है, अंतमति सुगति ऐसी हो कि बाबा की याद में ही शरीर छूटे। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। यहां तो देह अभिमान कितना रहता है ना, सतयुग में तो पहले से पता पड़ेगा कि अब शरीर छोड़ने का टाइम हुआ है। तो फर्क है ना, ये सब बातें नोट करनी और करानी है, औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह बाप समझाते हैं, ये कोई साधु महात्मा नहीं है, ब्रह्मा बाबा कोई साधु महात्मा नहीं है। ये ज्ञान बड़े मजे का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहां की यहां रही, यहां से हॉल से बाहर निकले सब गायब, जो सुना वो, जैसे वो कहते ना बाबा बच्चा जन्मता है तो कहता है वहां की वहां रही। तो ज्ञान को भी ऐसे नहीं सुना और वहीं छोड़कर चले गए, नहीं। गीत में भी सुना ना, कहते हैं साथ ले जाओ, तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली से धारणा का सार है, इस पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है, खुद भी हीरे जैसा बनना है और सबको हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान है जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। सारा विश्व आप जहान की आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। उसकी यादगार दिखाते ना, शंकर जी ने आंख खोली और क्या हुआ, तो वो कौन सी आंख खोली ना? तो संपूर्णता की आंख बाबा ने कहा जब वो खुलेगी तब परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूरत बन सकेंगे। तो संपूर्णता की आंख खुले हमारी, बाबा ऐसा चाहते हैं। स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। और मसा सकाश की पॉइंट है, मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भाव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों की वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब मनसा द्वारा विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। ओम शांति। सो टुडेज प्रोग्राम फॉर डबल फॉरेनर्स एट ज्ञान सरोवर, we will be listening this announcement after meditation. So first we will be sitting in remembrance of Baba.